नमस्कार, एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये लिखी तो गई थी 1956 में, मतलब करीब 70 साल पहले।
हाँ, काफी पुरानी है।
लेकिन पढ़ते हुए लगता है जैसे बिल्कुल आज की बात हो रही है। हमारे ऑफिस, हमारे समाज एकदम आईना दिखाती है। किताब है विलियम एच वाइट की, दी ऑर्गेनाइजेशन मैन, हिंदी में कहें तो संगठन पुरुष।
बिल्कुल। और ये नाम ऑर्गेनाइजेशन मैन सुनने में शायद थोड़ा अजीब सा लगे आज,
हाँ, लगता है
पर इसके अंदर जो बातें हैं वो चौंकाने वाली हैं।
ये किताब उस दौर को पकड़ती है जब अमेरिका में ना एक बड़ा शिफ्ट आ रहा था। लोग अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा, इन सब के लिए बड़े बड़े संगठनों, मतलब कंपनियों पर डिपेंड होने लगे थे।
और ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, है ना?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये उनके सोचने के तरीके में, उनके रहन सहन में, यहाँ तक कि उनके जो मूल्य थे उनमें भी घुस गया था। हाँ, और कमाल की बात यह है कि वाइट ने जिस संगठन पुरुष की तस्वीर खींची है, मतलब वो इंसान जो ग्रुप में घुल मिल जाने को, टीम प्लेयर बनने को ही सबसे बड़ा गुण समझता है,
हाँ,
उसकी झलक तो हमें आज के कॉर्पोरेट कल्चर में साफ दिखती है। वो कंपनी ही परिवार है वाली बातें,
बिल्कुल बिल्कुल।
यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो एक दबाव रहता है फिट इन करने का, उसमें भी। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम आज भी उसी रास्ते पर हैं या शायद उससे भी आगे निकल गए हैं।
सही सवाल है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। देखेंगे कि वाइट ने क्या देखा था, क्या चेतावनियां दी थी, और आज हमारे लिए उनके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। विलियम एच होली वाइट, ये कोई सिर्फ क्या कहते हैं, अकादमिक टाइप के नहीं थे।
हाँ, वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं थे।
बिल्कुल। वाइट 1970s से 1999 तक एक जबरदस्त ऑब्जर्वर थे, पत्रकार थे, समाजशास्त्री भी थे, और शहरी योजना पर भी उन्होंने काफी काम किया। उनकी नजर कमाल की थी, लोगों का व्यवहार, समाज कैसे बदल रहा है, बहुत बारीकी से देखते थे।
और एक चीज जो उन्हें बहुत खास बनाती है वो ये कि उनके पास ना एक बड़ा अनोखा नजरिया था, आप कह सकते हैं अंदरूनी भी और बाहरी भी।
हाँ, समझाइए जरा।
वो फॉर्च्यून मैगजीन के एडिटर थे, ये उस वक्त की बहुत बड़ी बिजनेस मैगजीन थी। तो कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, बड़े लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब वो बहुत करीब से जानते थे। ये हुआ उनका अंदरूनी नजरिया।
अच्छा,
लेकिन वो थे तो पत्रकार, तो उनमें वो सवाल पूछने वाली, आलोचना करने वाली और थोड़ा दूरी बनाकर चीजों को समझने वाली बात भी थी। ये हुआ उनका बाहरी नजरिया।
सही कहा। वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो एनालाइज कर रहे थे और अक्सर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे।
बिल्कुल।
और इसी मिले जुले नजरिए ने उन्हें द ऑर्गेनाइजेशन मैन जैसी किताब लिखने की हिम्मत और वो समझ दी। उन्होंने बाकायदा फील्ड वर्क किया। शिकागो के पास एक नया सबर्ब बसा था, वहां जाकर लोगों के बीच रहे, स्टडी किया।
हाँ, मतलब सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिखी है किताब।
नहीं, समाजशास्त्रीय काम भी किया और पत्रकारिता की पैनी नजर भी रखी। तो ये बातें हवा हवाई नहीं थी, जमीन से जुड़ी थी।
चलिए तो फिर अब सीधे किताब पर आते हैं, दी ऑर्गेनाइजेशन मैन। इसका मोटा मोटा आइडिया क्या है?
हाँ, तो जैसा आपने कहा, 1956 में आई है किताब, और इसने अमेरिकी मिडिल क्लास के एक नए टाइप के इंसान को दुनिया के सामने रखा, ऑर्गेनाइजेशन मैन।
संगठन पुरुष।
हाँ, ये कौन है? ये वो आदमी है जो अच्छी सैलरी पाता है, कॉलेज पढ़ा लिखा है, वाइट कॉलर जॉब करता है, और उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, उसके सपने, उसके मूल्य, उसकी पहचान, वो सब उस बड़े संगठन से जुड़ गई है जिसके लिए वो काम करता है। वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी का आदमी है। और वाइट का जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि अमेरिका की जो पुरानी सोच थी, जिसे प्रोटेस्टेंट एथिक कहते हैं,
मतलब कड़ी मेहनत करो, खुद पर निर्भर रहो, पैसे बचाओ, अपनी अलग पहचान बनाओ, वो सब।
बिल्कुल, वो चीज धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उसकी जगह ले रहा था एक नया सोशल एथिक, मतलब सामाजिक लोकाचार।
ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, कल्चरल शिफ्ट था।
वाइट ने इस नए सोशल एथिक के तीन पिलर बताए थे, है ना?
हाँ, तीन मुख्य बातें।
पहली तो ये कि असली क्रिएटिविटी, नए आइडियाज, वो ग्रुप से आते हैं, अकेले इंसान से नहीं, मतलब टीम वर्क ही सब कुछ है।
सही।
दूसरी ये कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है किसी ग्रुप का हिस्सा बनना, वो अपनेपन वाली फीलिंग, बिलोंगिंगनेस, अकेलापन मतलब बीमारी। और तीसरी ये कि इस अपनेपन को पाने के लिए, ग्रुप में फिट होने के लिए, आप वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट टेक्निक्स, साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह।
लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। वाइट ये सब तारीफ में नहीं लिख रहे थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो चेतावनी दे रहे थे।
एग्जैक्टली, वो वार्निंग दे रहे थे। उनका कहना था कि ये सोशल एथिक सुनने में देखने में शायद अच्छा लगे,
आरामदायक लगे,
हाँ सेफ लगता है, पर ये व्यक्ति की आत्मा के लिए, कंपनी की असली ग्रोथ के लिए और पूरे समाज के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सबको एक जैसा बनाने पर जोर देता है। कॉन्फर्मिटी, भेड़ चाल। ये जो सच्ची लीक से हटकर सोचने वाली क्रिएटिविटी होती ना, उसका गला घोट देता है, और जो औसत दर्जे का है, जो मीडियोकर है, उसी को आइडियल बना देता है।
व्हाइट ने एक तरह से एक आरामदायक गुलामी की तस्वीर खींची थी, जहां सुरक्षा तो है पर अब की आवाज नहीं है।
किताब के अलग अलग हिस्सों में व्हाइट इसी बात को और खोलते हैं। पहले वो बताते हैं कि ये सोशल एथिक आया कहां से। कोई साजिश नहीं थी ये?
नहीं,
ये बस बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी दफ्तरों का जो नौकरशाही ढांचा होता है ना, उसका लॉजिकल नतीजा था। इन संगठन को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबल कर्मचारी।
हाँ, जो ज्यादा सवाल ना पूछे।
हाँ
बिल्कुल, तो वो सुरक्षा का लालच देते हैं, पर बदले में आपकी आजादी, आपकी अलग सोच, उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ग्रुप थिंक जिसे कहते हैं।
हाँ, ग्रुप थिंक,
जहाँ सब एक जैसा सोचने लगते हैं, कोई अलग राय देता ही नहीं, वो यहीं से शुरू होता है।
और ये सिर्फ ऑफिस तक नहीं था। व्हाइट ने देखा कि कैसे एजुकेशन सिस्टम भी बदल रहा था, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस स्कूल्स, अब वो सिर्फ नॉलेज या स्किल्स नहीं दे रहे थे।
वो क्या सिखा रहे थे फिर?
वो युवाओं को अच्छा टीम प्लेयर बनना सिखा रहे थे, मिलनसार होना, एडजस्ट करना, ये सब। फोकस कैसे सोचें से हटकर कैसे फिट हों पर आ गया था।
जैसे कॉर्पोरेट दुनिया के लिए पुर्जे तैयार हो रहे हो।
बिल्कुल, जो मशीन में आसानी से फिट हो जाएं।
फिर आता है वो हिस्सा जो आज भी मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है, पर्सनालिटी टेस्ट्स।
अरे हाँ, व्हाइट ने तो उसे बड़ा मजेदार नाम दिया था, स्नायु विकार, न्यूरोसिस।
हाँ, शायद इसलिए कि वो मानते थे कि ये टेस्ट खुद ही एक तरह की दिमागी बीमारी दिखाते हैं।
हाँ हाँ, हो सकता है। वो इन टेस्ट को पूरी तरह अनसाइंटिफिक और अनैतिक मानते थे।
उनका कहना था कि इनका असली मकसद ये जानना नहीं है कि आप कितने काबिल हैं,
बल्कि ये छांटना है कि आप कितने सीधे हैं, कितने सिस्टम में फिट होने वाले हैं, कितने व्यक्तिवादी नहीं हैं।
जो ज्यादा सवाल पूछते हैं या जिनकी सोच अलग है, वो इन टेस्ट्स में अक्सर फिट नहीं होते।
बिल्कुल, व्हाइट ने तो मजाक में सलाह भी दी थी कि इन टेस्ट में पास होना है तो जानबूझकर सबसे बोरिंग, सबसे घिसे पिटे जवाब दो, चीट करो।
सही।
और ये बात सीधी जुड़ती है अगले पॉइंट से। कंपनियां कहती तो हैं कि हमें नए आइडियाज चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए।
हाँ, सुनने में तो यही आता है,
पर असल में उन्हें चाहिए स्टेबिलिटी, एक रूपता। व्हाइट ने दिखाया कि कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, आर्टिस्ट भी जब किसी बड़ी कंपनी या इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो उन्हें भी कमेटी के चक्कर में, सबकी सहमति बनाने के चक्कर में, अपनी ओरिजिनल सोच से समझौता करना पड़ता है।
हाँ, ये तो होता है।
ताकि नमूने अकेले जिद्दी दिमाग से निकलते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाने से नहीं।
व्हाइट उन सोशल इंजीनियर्स और ह्यूमन रिलेशंस एक्सपर्ट्स की भी आलोचना करते हैं।
हाँ, जो इस सोशल एथिक को साइंटिफिक जामा पहनाने की कोशिश करते थे।
ये एक्सपर्ट्स ऑफिस में किसी भी तरह के झगड़े, तनाव को बुरा मानते थे, चाहते थे कि सब कुछ एकदम स्मूथ चले,
चिकना माहौल।
हाँ, लेकिन व्हाइट कहते थे कि भाई, थोड़ी रगड़, थोड़ी बहस, थोड़ा टेंशन, ये तो तरक्की के लिए जरूरी है। अगर सब हमेशा सहमति रहेंगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे।
सही बात है। और ये टकराव सिर्फ ऑफिस में नहीं था, व्हाइट ने उस दौर के पॉपुलर नॉवेल्स को भी देखा, जैसे द मैन इन द ग्रे फ्लैनल सूट।
अच्छा।
इन कहानियों में अक्सर एक हीरो होता है जो सिस्टम से लड़ना चाहता है, अपनी पहचान बचाना चाहता है।
लेकिन
ज्यादातर कहानियों में अंत में क्या होता है? वो समझौता कर लेता है, सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। व्हाइट के हिसाब से ये दिखाता था कि समाज में कहीं ना कहीं ये मान लिया गया था कि सिस्टम से जीतना बहुत मुश्किल है।
और फिर आता है किताब का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा फेमस है, नया उपनगर, द न्यू सबर्बिया।
हाँ, पार्क फॉरेस्ट वाला।
हाँ, व्हाइट और उनकी टीम ने शिकागो के पास बसे पार्क फॉरेस्ट नाम के एक इलाके की बहुत गहरी स्टडी की थी। ये खास तौर पर बड़ी कंपनियों में काम करने वाले यंग एग्जीक्यूटिव्स और उनके परिवारों के लिए प्लान करके बसाया गया था।
तो कैसा था वहाँ जीवन?
व्हाइट बताते हैं कि ये लोग बड़ी कंपनियों के थे जिनके ट्रांसफर होते रहते थे हर कुछ साल में नई जगह।
तो जड़े नहीं जम पाती होंगे।
बिल्कुल नहीं, गहरे रिश्ते बनाने का मौका ही नहीं। तो इसकी भरपाई कैसे होती थी? बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग से।
अच्छा, कैसे? मतलब हर कोई एक दूसरे के घर आ जा रहा है, लगातार पार्टियां चल रही हैं, बच्चों के लिए एक जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, प्राइवेसी, एकांत, वो लगभग खत्म। यहाँ तक कि घरों के डिजाइन भी ऐसे थे, बड़ी खिड़कियां, खुले लॉन, कि आप पड़ोसी क्या कर रहा है देख सके।
अरे बापरे,
ऑफिस की तरह यहाँ भी ग्रुप में फिट होना, सबके जैसा दिखना और करना, यही सक्सेस का फॉर्मूला था। ये सबब कॉर्पोरेट लाइफ का ही एक्सटेंशन थे। काम और निजी जीवन की बाउंड्री एकदम धुंधली।
तो फिर वाइट का हल क्या था? क्या वो कह रहे थे कि क्रांति कर दो, संगठन छोड़ दो?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो प्रैक्टिकल थे। वो मानते थे कि आज की दुनिया में बड़े संगठन जरूरी हैं, उनसे भाग नहीं सकते आप।
तो फिर
उनका जोर इस बात पर था कि व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, संगठन के इस दबाव को पहचानना होगा, रिकग्नाइज करना होगा, और उसके खिलाफ एक, क्या कहें, रचनात्मक और जिम्मेदार लड़ाई लड़नी होगी।
ये लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़नी है।
हाँ, अपने अंदर। अपनी पहचान को पूरी तरह ग्रुप में मिटने नहीं देना है। अपनी सोचने की आज़ादी, अपनी नैतिकता, उसको बचाए रखना है, भले ही आप उसी संगठन में काम कर रहे हो।
तो इस पूरी किताब से कुछ बहुत बड़े मुद्दे उभर कर आते हैं ना, जिन पर सोचना जरूरी है।
हाँ, कुछ की थीम्स हैं। सबसे पहला तो वही सोशल एथिक का उदय, ये सोच कि ग्रुप ही सब कुछ है, व्यक्ति बस एक हिस्सा। आज जब कंपनियां कहती हैं हम एक परिवार हैं या टीम फर्स्ट, तो क्या ये उसी सोशल एथिक का नया रूप है? सुनने में अच्छा लगता है।
हाँ, लगता तो है,
पर क्या ये हमारी इंडिविजुअल सोच को दबाता है?
दूसरा बड़ा थीम है अनुरूपता का अत्याचार, टिरनी ऑफ कन्फॉर्मिटी, मतलब सबके जैसा बनने और सोचने का प्रेशर। ये सिर्फ कपड़ों या बातों तक नहीं है, ये विचारों पर भी है। जो अलग सोचता है, जो सवाल उठाता है, उसे अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता है।
हाँ।
क्या आज सोशल मीडिया के इको चेंबर्स में या पॉलिटिकल बहसों में, जहां सिर्फ अपनी ही तरफ की बातें गूंजती हैं, हम यही नहीं देख रहे?
बिल्कुल देख रहे हैं। तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन का भ्रम। व्हाइट ने पर्सनैलिटी टेस्ट्स और एचआर की तकनीकों पर सवाल उठाए थे। क्या ये वाकई साइंटिफिक हैं, या ये सिर्फ उन लोगों को चुनने का तरीका है जो आसानी से सिस्टम में फिट हो जाएं? आज तो एआई और एल्गोरिथम का जमाना है, वो हमारी नौकरी से लेकर रिश्तों तक सब तय कर रहे हैं। क्या ये तकनीकें भी अनजाने में कॉन्फर्मिटी को ही बढ़ावा दे रही हैं?
सोचने वाली बात है।
चौथा है जीवन का समरूपीकरण, होमोजिनाइजेशन ऑफ लाइफ। कैसे काम की दुनिया का असर हमारे निजी जीवन पर पड़ता है और सब कुछ एक जैसा होने लगता है। व्हाइट ने उन सबब्स की बात की जहां सब घर, सब लोग, सब आदतें एक जैसी थीं।
हाँ?
क्या आज मॉल कल्चर, एक जैसे ब्रांड्स, पूरी दुनिया में एक जैसे फैशन ट्रेंड्स, ये सब भी उसी एक रूपता की तरफ इशारा करते हैं? क्या हमारी लोकल कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी खत्म हो रही है? पांचवा, निजी क्षेत्र का मिटना, काम और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन का धुंधला होना। ऑफिस का कल्चर, ऑफिस की उम्मीदें घर तक पीछा करती हैं। आज हम वर्क लाइफ बैलेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं,
बहुत करते हैं,
लेकिन व्हाइट ने इसकी जड़ें बहुत पहले देख ली थी। जब कंपनी ही परिवार बन जाती है तो क्या पर्सनल लाइफ बचती है?
और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, व्यक्ति का संघर्ष। व्हाइट हार मानने को नहीं कहते, वो मानते हैं कि व्यक्ति और संगठन के बीच एक टेंशन हमेशा रहेगा, और ये जरूरी भी है।
हाँ,
जरूरत है कि व्यक्ति इस टेंशन को समझे, संगठन के दबाव को पहचाने और अपने अंदर की आवाज, अपने कॉन्शियंस के लिए खड़ा हो। यह आसान नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है।
इस किताब में ना कई पंक्तियां ऐसी हैं जो एकदम हिट करती हैं या सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ मुख्य विचारों को फिर से देखते हैं जो व्हाइट के तर्क का निचोड़ हैं।
हाँ बिल्कुल। पहली बात, यह किताब संगठन पुरुष के बारे में है, जिन्होंने संगठन जीवन की कस्में खा ली हैं। सोचिए, कस्में खा ली हैं।
हाँ,
ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक तरह की लॉयल्टी की शपथ है, जहां व्यक्ति अपनी पूरी पहचान संगठन को सौंप देता है।
दूसरी, सोशल एथिक का आधार, समूह ही रचनात्मकता का स्रोत है, अपनेपन परम जरूरी है और इसे विज्ञान से हासिल किया जा सकता है। ये उस नई आइडियोलॉजी का सार है जिसने पुराने इंडिविजुअलिज्म की जगह ली, ग्रुप ही सब कुछ और साइंस हमारा टूल।
तीसरी, और ये मुझे सबसे तीखी लगती है, पर्सनैलिटी टेस्ट पर सबसे बड़ा पाप है व्यक्ति होना।
हाँ,
मतलब इन टेस्ट का छिपा हुआ मकसद ही ये है कि आपकी जो ओरिजिनैलिटी है, आपकी यूनिकनेस, उसको एक पाप या कमी की तरह देखा जाए, ताकि आप एक जैसे पुर्जे बन सकें।
और चौथी, जो रास्ता दिखाती है, उसे संगठन से लड़ना होगा, मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से, उन व्यक्तिगत नैतिकताओं और विचारों का बचाव करते हुए जिन्हें संगठन अपनी भलाई के नकाब में दबाना चाहता है।
मतलब लड़ाई तोड़फोड़ वाली नहीं,
नहीं, अंदर से, समझदारी से, अपनी आत्मा और अपने वैल्यूज को बचाने की लड़ाई।
अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब बातें आज हमारे लिए, खासकर भारत में, कैसे लागू होती हैं? सोचिए जरा अपने ऑफिस के माहौल के बारे में।
हम्म,
क्या वहाँ टीम स्पिरिट या पॉजिटिव माहौल के नाम पर मुश्किल सवाल पूछने वालों को या अलग राय रखने वालों को चुप करा दिया जाता है? क्या मीटिंग्स में लोग सिर्फ बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं? व्हाइट हमें याद दिलाते हैं कि असली तरक्की के लिए थोड़ी असहमति, थोड़ी बहस जरूरी है।
और पर्सनल लाइफ में क्या हम सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए या अपने दोस्तों के ग्रुप में फिट होने के लिए या मोहल्ले के पार्टी में एडजस्ट करने के लिए वो बन रहे हैं जो हम असल में नहीं हैं?
ये होता है।
क्या हम अपनी पसंद नापसंद, अपनी सोच को दूसरों के हिसाब से बदल रहे हैं? व्हाइट की सलाह आज भी उतनी ही जरूरी है। अपनी प्राइवेसी बचाइए, अपनी सोचने की आज़ादी बचाइए, अपने बच्चों को सिर्फ सबके साथ चलने वाला नहीं बल्कि अपना रास्ता बनाने वाला, सवाल पूछने वाला विचारक भी बनाइए।
व्हाइट का एनालिसिस हमें आज की बहुत सी प्रॉब्लम समझने में मदद करता है। क्यों वर्क लाइफ बैलेंस इतना मुश्किल है, क्यों बड़ी टेक कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए ऑफिस में ही घर जैसी सारी फैसिलिटीज दे देती हैं,
शायद ताकि वो वही रहें।
हाँ, और क्यों हमें अक्सर लगता है कि हमारी आवाज कहीं खो गई है? ये सब उसी ऑर्गेनाइजेशन मैन वाली दुनिया के नए, शायद ज्यादा चमकीले पर उतने ही दबाव वाले रूप है।
तो इस किताब से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ग्रुप में शामिल होने का जो आराम, जो सुरक्षा का एहसास है, वो बहुत लुभावना हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो कॉन्फर्मिटी का प्रेशर आता है ना, उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना होगा।
हाँ।
ये प्रेशर अक्सर दिखता नहीं है, महसूस होता है, एक मीठे जहर की तरह जो धीरे धीरे आपकी शख्सियत को खत्म कर सकता है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि व्हाइट हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची क्रिएटिविटी, नए विचार और सही गलत का फैसला करने की जो हिम्मत होती है, वो अक्सर अकेले सोचने से आती है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से आती है, न कि हमेशा भीड़ के साथ चलने से।
बिल्कुल।
हमें ये समझना होगा कि जिन संगठनों के लिए हम काम करते हैं या जिन ग्रुप्स का हम हिस्सा हैं, वो सिर्फ हमें सुविधाएं या पहचान ही नहीं देते, वो चुपके से हमारे वैल्यूज और हमारी सोच को भी बदलने की कोशिश करते रहते हैं। शायद आज इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, हम व्हाइट के ऑर्गेनाइजेशन मैन से भी ज्यादा संगठन के गुलाम हो गए हैं, ये सोचने वाली बात है।
अनिवार्य समापन पंक्तियां। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।